अध्याय चार, दलितों का भाग्य। मैंने ये भी देखा कि पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। मैंने दलितों के आंसू देखे, उनको कोई सांत्वना नहीं देता। उन पर अत्याचार करने वाले शक्तिशाली हैं और उनको कोई सांत्वना नहीं देता। मैं ये भी समझा कि मृतक जो पहले मर चुके हैं उन लोगों से सौभाग्यशाली हैं जो अब तक जीवित हैं, और उन दोनों से और सौभाग्यशाली वो है जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ, जिसने वो बुराई नहीं देखी जो सूर्य के नीचे की जाती है, जिसने वे कुकर्म नहीं देखे जो पृथ्वी पर किए जाते हैं। परिश्रम। मैंने ये भी देखा है कि मनुष्य के परिश्रम की सारी सफलता अपने पड़ोसी से ईर्ष्या का परिणाम है। ये भी व्यर्थ है और हवा पकड़ने के बराबर है। मूर्ख हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ अपना ही विनाश करता है। मुट्ठी भर विश्राम, अंजलि भर परिश्रम से और हवा पकड़ने के प्रयत्न से अच्छा है। एकाकीपन। मैंने पृथ्वी की एक और व्यर्थ बात देखी। कोई व्यक्ति एकदम अकेला है, उसके न तो कोई पुत्र है और न कोई भाई। वो परिश्रम करता रहता है, उसकी आंखें उसकी संपत्ति से तृप्त नहीं है। वो मन ही मन पूछता है, मैं किसके लिए परिश्रम करता और क्यों अपने को सुख से वंचित करता हूं। ये भी व्यर्थ और दुखद है। एक अकेले मनुष्य से दो अच्छे हैं, उन्हें अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि एक गिर जाता है तो दूसरा उसे उठाता है, किंतु अकेले मनुष्य पर शोक, गिरने पर उसे कोई नहीं उठाता। यदि दो साथ लेटते हैं तो गर्म रहेंगे, अकेला लेटने वाला कैसे गर्म रहेगा। यदि अकेले व्यक्ति से कोई प्रबल हो जाता तो दो व्यक्ति उसका सामना कर सकेंगे। तीन लड़ों की बटी रस्सी आसानी से नहीं टूटती। राजनीति। सलाह न मानने वाले बूढ़े मूर्ख राजा से दरिद्र किंतु बुद्धिमान नवयुवक अच्छा है। वो नवयुवक चाहे बंदी गृह से निकलकर राजा बन गया हो या अपने राज्य में दरिद्रता में जन्मा हो, किंतु मैंने देखा कि पृथ्वी के सब निवासी राजा के उत्तराधिकारी नवयुवक का पक्ष लेते थे। उसके अनुयायियों की संख्या अपार थी, किंतु आने वाली पीढ़ी उससे भी असंतुष्ट थी। ये भी व्यर्थ और हवा पकड़ने का प्रयत्न है। उपासना। यदि तुम ईश्वर के मंदिर जाते हो तो सावधान रहो और पास आकर ध्यान से सुनो। ये मूर्खों की तरह बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। वे ये भी नहीं जानते कि वे कब बुराई करते हैं।